थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन दिनों हम बाइबल की पुस्तक में से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच में आप महान हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सब की सहायता करें, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी आज हम सुने हम समझ सकें, सीख सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और इसके द्वारा हम आपको महिमा देने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, उन पर कृपा दृष्टि करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज का विषय हमारे लिए होगा उसके स्तुति गीत का सामूहिक गान। भजन संहिता 94 से आरंभ होने वाले अद्भुत भजन समूह का यह अंतिम भजन है। इस भजन समूह में हमने प्रभु यीशु को राजा के रूप में देखा है, यहोवा राजा है। भजन संहिता 93 उसके एक पद में लिखा है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना हुआ है। यह भजन भविष्य सूचक है और प्रभु के पृथ्वी पर फिर आने की चर्चा करता है। पहली बार तो वह वैभव में नहीं आया था, परंतु अब वो आएगा। जॉर्ज मैकडोनाल्ड कहते हैं, एक छोटा शिशु जिसने अपनी माँ को रुलाया, परंतु इस भजन में कहा गया है कि वह जब दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा तब वह महात्म्य का पहरावा पहने होगा। भजन संहिता 94 में कहा गया है, इसके पद एक में, हे बदला लेने वाले परमेश्वर। जी हाँ, प्रभु यीशु अब पृथ्वी पर आएगा तो वह सब बातों में सुधार लाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम बदला ले सकते हैं, परंतु प्रभु का राज्य ऐसा नहीं होगा। भजन संहिता 95 में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और तब भजन संहिता 96 में लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगो यहोवा के लिए गाओ। भजन संहिता 97 में, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो। और तब भजन 98 में है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। भजन संहिता 99 में लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। मेरे मित्रों, अब एक महान स्तुति गीत है भजन 100। यह एक श्रृंखला के अंत में हालेलुया का गान है। यह इस भजन समूह का उपसंहार है। अतः सुने भजन संहिता 100 उसके एक और दो पद में लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मैं इस तथ्य पर एक बार फिर से बल देना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका मुंह लटका हुआ रहे या मुंह लटका कर उसकी आप आराधना करें। निसंदेह ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं जब हमारे मुंह लटके हुए होते हैं, हम निराश होते हैं, हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, परीक्षाओं में पड़े होते हैं, परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं। हम अपने आप को उसके हाथ में छोड़ देते हैं, परंतु यह आराधना नहीं है। परमेश्वर की आराधना वह है जब आप उसकी स्तुति करते हैं। वह चाहता है कि आप आनंदित रहें। जी हाँ, आज मधुशालाओं में, शराब खानों में लोग आनंद के लिए जाते हैं, आनंद का समय वहां ढूंढते हैं। काश हमारी कलीसियाओं में भी मदिरा रहित आनंद का समय हो, जहां पर लोग आए और उस महान शांति को प्राप्त करें। अतः हम प्रभु की आराधना के लिए तैयार हो जाएं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, अर्थात हर एक मनुष्य जय जयकार करे। यह एक विश्वव्यापी स्तुति गान है। वह समय आता है जब संपूर्ण विश्व यह गाएगा, खुश हो, खुदावंद आया है। मेरे मित्रों, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यह स्तुति का एक अद्भुत गीत है। उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसका महिमान्वन करो। अब क्योंकि मैं सेवा में हूं, इसलिए मैं युवाओं को परामर्श दे सकता हूं या परामर्श दूं कि वे आराधना का संचालन कैसे करें। मैं अपनी सेवा की आलोचना में यह कहना भी चाहता हूं कि मेरी आराधनाओं में मैंने अधिक स्तुति नहीं की थी, परंतु हमें परमेश्वर की अधिकाधिक स्तुति करना है। हमें परमेश्वर की अधिकाधिक आराधना करना है। हमें उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ आना है। यह भजन एक महान स्तुति गान है। परमेश्वर के वचन में अनेक स्तुति गान है। विश्वासी इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में गा सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है, उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, परंतु हम में से कुछ लोग उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। हम उन्हें संभाल कर रख लेते हैं कि बुरे समय में काम आए। आज सूर्य कैसा भी अधिक चमक रहा क्यों ना हो, समय तो बुरा ही है। आज सूर्य कैसा भी अधिक चमक क्यों ना रहा हो, समय तो बुरा ही है। परमेश्वर की आशीषों को काम में लेना आरंभ कर दें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय में एक और स्तुति गान है। 1 अध्याय उसके 5 से 6 पद में, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो इसके द्वारा पृथ्वी पर ही नहीं रह पाता हूं। जी हाँ, संपूर्ण पृथ्वी को बुलाहट है कि ऊंचे स्वर में यहोवा का जय जयकार करे और महान हल्लेलुया के गीत गाए, क्योंकि उस दिन संपूर्ण संसार उसे जान लेगा। मेरे प्रियो, अगले पद में एक रोचक बात है। परमेश्वर को सृजनहार और तारनहार एक साथ कहा गया है। आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 100 उसके 3 पद को पढ़िए। लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। विश्वासियों में से अनेक जन इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। आरंभिक कलीसिया पर जब सताव आरंभ हुआ, तब प्रेरितों ने यरूशलेम की कलीसिया को आकर बताया कि क्या हो रहा है। उनसे यह बुरा समाचार सुनकर कलीसिया ने प्रार्थना की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। अब कोई कहे कि यह कहना तो आसान है, जी हाँ, परंतु क्या आज आप इसमें विश्वास करते हैं? ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अर्थात वे परमेश्वर हैं ही नहीं। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। परमेश्वर सृजनहार है, हमें उसकी उपासना करना है, क्योंकि वह सृजनहार है, उसी ने जगत की रचना की है। मेरे मित्रों, हम उस सृजनहार के उपासक ही नहीं हैं, हम उसी के हैं, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। आप भेड़े कैसे हैं? आपको उधार पाना है। यह वह विषय है जिसमें चरवाहा भेड़ के लिए मर गया, भेड़ अपने चरवाहे के लिए नहीं मरी। इस भजन में भेड़ शब्द किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है? इसराइल के लिए। प्रभु यीशु उनका भी चरवाहा है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि उसकी और भी भेड़े हैं जो इसराइल की नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 14 से 16 पद में प्रभु यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु यीशु इसराइल का चरवाहा है, वह आपका और मेरा भी चरवाहा है, यदि हम उसकी भेड़े हैं। तब आइए हम भजन संहिता 100 के 4 पद को पढ़ें। लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस प्रकार उसकी उपस्थिति में आएं। मुझे किसी ने बताया कि एक बार वह पूर्वकालिक एक महान कलीसिया में आराधना करने के लिए गए और उन्होंने उससे बड़ी निर्जीव कलीसिया कभी नहीं देखी। आप जानते हैं समस्या क्या है? आराधक उस कलीसिया में स्तुति भरे मन से उपस्थित नहीं थे। वे परमेश्वर के आभारी मन से नहीं आए थे। वे उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश नहीं कर रहे थे। रविवारीय आराधना में आप यह सुनिश्चित करें कि आपका मन धन्यवाद और स्तुति से भरा हो। यदि आप इसे चूक जाते हैं तो आप कलीसिया के लिए किसी काम के नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 100 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं या आप क्यों हैं या आप कहाँ हैं, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ भला है। ओह, यह कैसा भला है! उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी करुणा का अंत नहीं होता है। उसने मुझे जो करुणा दिखाई उससे आप सोचेंगे कि अब उसकी करुणा समाप्त हो गई है। जी नहीं, उसके पास आपके लिए भी बहुत करुणा है। उसकी करुणा अनंत है, जैसे एलिया के रहते उस विधवा का आटा समाप्त नहीं हुआ था। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ओह, यह स्तुति का कैसा महान भजन है! मेरे प्रियो, यह अद्भुत है कि उसकी करुणा सबके लिए है। यहाँ पर भजन संहिता 100 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 101 में देखेंगे, जिसका विषय है धार्मिकता और न्याय सम्मत राजा के लिए स्तुति गान। यह दाऊद का भजन है जो 101 से 106 तक 6 भजनों के समूह का पहला भजन है। यह भजन राजा की स्तुति का भजन है। कल्पना कीजिए कि इस भजन संग्रह का मुख्य विषय कौन है? प्रभु यीशु। वह धार्मिक और शांति का राजा है और वह पृथ्वी पर राज्य करेगा। यह भजन दाऊद के राज्य के संबंध में यथोचित नहीं है, अतः इस भजन को भविष्यवाणी का भजन होना आवश्यक है। यह भजन भविष्य में उस पुरुष के विषय है जिसके लिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि वह उसके वंश में उत्पन्न होगा। वह पुरुष दाऊद के वंशजों में न तो सुलेमान था और न ही अन्य कोई, जब तक कि यीशु का जन्म नहीं हुआ। वह दाऊद का वंशज था, अतः भजनकार प्रभु यीशु की ही चर्चा कर रहा है। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 101 उसके 1 पद को पढ़िए। लिखा है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। यह भजन भी अन्य भजनों के सदृश परमेश्वर की स्तुति से आरंभ होता है। मैं करुणा और न्याय अर्थात यहाँ पर दंड नहीं है के विषय में गाऊंगा। आज करुणा और न्याय का संयोग नहीं है। मनुष्य के लिए उन्हें एक साथ निभाना बहुत कठिन है, परंतु परमेश्वर के लिए यह आसान काम है। हम करुणा और न्याय के विषय गा सकते हैं, क्योंकि हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, वह धार्मिकता और न्याय का राजा है। यहाँ कैसे उत्तम व्यक्ति का चित्रण है। भजन संहिता 101 उसके 2 पद में लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मुझे ध्यान नहीं कि दाऊद का आचरण कभी ऐसा रहा हो। यहाँ हम जिसे देख रहे हैं वह मुक्ति दाता है और पिता का एकमात्र पुत्र है। राजा मनुष्य के पुत्र की नाई कहता है, इस पृथ्वी पर वह मनुष्य का पुत्र ही था। मुक्तिदाता के रूप में वह पिता का पहलौठा था, परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा के अधीन दीनता का स्थान स्वीकार किया। इस पृथ्वी पर उसने स्वेच्छा से छोटा स्थान स्वीकार किया, अर्थात ग्रहण किया। हम तो ऊंचा स्थान ही पाने का प्रयत्न करते हैं और प्रयत्नरत रहते भी हैं। उसने छोटा स्थान इसलिए स्वीकार किया कि हमें ऊंचे स्थान पर बैठाए। अपने देह धारण से पूर्व उसने कहा, इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि उसका खाना और पीना उसके भेजने वाले स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति के निमित्त हो, और उसने अपने पिता की इच्छा को सिद्धता से पूरा किया। वह धीरज धरकर उस समय की प्रतीक्षा करता रहा जिसे उसने मेरा समय कहा, जब उसने आपके और मेरे उद्धार को पूर्ण किया। आज वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर उसकी इच्छा पूरी कर रहा है और उस समय की प्रतीक्षा में है जब पिता परमेश्वर उसे फिर से पृथ्वी पर भेजेगा, क्योंकि पिता ने उससे कहा है। भजन संहिता 110 उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इस पद पर बहुत विवाद हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब वह इस पृथ्वी पर पिता के अधीन राज्य करेगा, तब वह परमेश्वर में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। परंतु इस पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति के बारे में कहा गया है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। जी हाँ, अब देखिए प्रभु यीशु का राज्य कैसे होगा। दाऊद का राज्य ऐसा नहीं था। भजन संहिता 101 उसके 4 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। मेरे प्रियो, डॉक्टर गैबलिन का अनुवाद अधिक स्पष्ट है, उल्टी समझ वाले मुझसे दूर रहेंगे और बुरा करने वालों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो गुप्त में अपने पड़ोसी की बुराई करे उसे मैं नष्ट कर दूंगा। घमंड से चढ़ी आंखों और मन के घमंडी को मैं सहन नहीं करूंगा। मेरी दृष्टि देश के विश्वास योग्य मनुष्यों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे साथ वास करें। जो खराई से चलता है वह मेरी सेवा करेगा, जो छल करता है वह मेरे भवन में प्रवेश नहीं करेगा, झूठ बोलने वाला मेरी दृष्टि में स्थिर न रहेगा। प्रतिदिन भोर को मैं देश के सब दुष्टों का नाश करूंगा कि यहोवा के नगर से सब अनर्थकारियों को अलग कर दूं। यह इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के राज्य का चित्रण है। सहस्त्र वर्षीय राज्य में आपको सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग की आवश्यकता नहीं होगी, केवल प्रभु यीशु ही न्याय करेगा। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथ में न्याय को दे दिया है और वह प्रतिदिन भोर के समय सबका न्याय करेगा। आपको उसका आदेश मानना होगा। वह निरंकुश शासक होगा। हर एक प्राणी उसकी इच्छा को पूरी करेगा। उस समय पृथ्वीवासी धार्मिकता और न्याय का शासन करने वाले राजा के लिए नया गीत गाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर भजन संहिता 101 समाप्त होता है और अब हम 102 भजन से देखेंगे, जिसका विषय है कष्ट और दुख की प्रार्थना। यह मसीह संबंधित भजन है जो गतसमनी की वाटिका में प्रभु यीशु का चित्रण प्रस्तुत करता है। इस भजन के लेखक का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ केवल कल्पनाएं ही की जा सकती है। मैं यह मानता हूं कि दाऊद ने यह भजन लिखा है दीन जन की उस समय की प्रार्थना, जब वह दुख का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के सामने खोलकर कहता है। अतः यह भजन गतसमनी की वाटिका में हमारे प्रभु यीशु कष्टों और दीनता का चित्र प्रस्तुत करता है। हम शीघ्र ही देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने इस भजन को नए नियम में मसीह का भजन कहा है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 102 उसके एक पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। डॉक्टर गबलिन का अनुवाद है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी पुकार तुझ तक पहुंचने दे। यहां यहोवा यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। वह दीन अवश्य हुआ, परंतु वह देह में प्रकट यहोवा था। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसके 24 पद में एक बड़ी असामान्य बात लिखी है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित यहोवा स्वर्ग में उपस्थित यहोवा से कहता है कि वह दंड भेजे। डॉक्टर गैबलिन ने यह टिप्पणी की, परंतु यहां दीनता में अपने पाप वाहक होने के महान कार्य को देख यहोवा का साथी उससे पुकारता है। जकर्याह 13 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। यहां भविष्यवाणी में गतसमनी के प्रार्थना और निवेदन गहरी पुकार और आंसुओं के साथ है। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में देखते हैं, और उसकी प्रार्थना भी सुनी गई। परंतु हम यहां देखते हैं कि पवित्र और धर्मी परमेश्वर का क्रोध उस पर गिरा, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों को उठाया था। मेरे मित्र, यह भजन कैसा महिमामय और अद्भुत भजन है। यहां हम गहरी हाय और पीड़ा देखते हैं जो कभी कोई मनुष्य पर पड़ी हो। भजन संहिता 102 उसके 8 पद में लिखा है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। यह निराशा की चरम सीमा है। तब हम भजन संहिता 102 उसके 10 पद में पढ़ते हैं, यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। क्रोध और कोप इब्रानी भाषा के अत्यधिक कठोर शब्द हैं। प्रभु यीशु ने इन्हें सहन किया। क्यों? इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय उसके 2 पद में, क्योंकि उसके सामने आनंद था। तब हम भजन संहिता 102 उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। ध्यान दीजिए, वह सियोन पर दया करेगा जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में हम इसे पाते हैं, वह इसराइल की जाति के लिए मर गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 50 और 51 में लिखा है, संपूर्ण जाति के लिए किसी एक का मरना अवश्य था और प्रभु यीशु उसके लिए मर गया। अपनी महिमा में प्रकट होने पर द्वितीय आगमन पर वह सियोन का पुनः निर्माण करेगा। मित्रों, हम भजन संहिता 102 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु जानता था कि बलिदान की मृत्यु के द्वारा सियोन अंततः उद्धार पाएगा। तब हम भजन संहिता 102 उसके 25 से 27 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। पवित्र आत्मा इस अध्याय को इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय उसके 10 से 12 पद में संदर्भित करता है। हम कभी नहीं जान पाते कि यह भजन मसीह से संबंधित है। यदि धर्मशास्त्र का लेखक इसका अर्थ इब्रानियों के प्रथम अध्याय में प्रकाशित नहीं करता, भजन संहिता 102 प्रभु यीशु से संबंधित है। यह कष्ट और दुखों में उसकी प्रार्थना है। यह गतसमनी में उपस्थित राजा है। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में उसकी महिमा से पूर्व की उसकी दीनता प्रकट की गई है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, क्योंकि उसने हमारे लिए कष्ट उठाया, इसलिए वह हमारे साथ संवेदना प्रकट कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं भजन 102 को गतसमनी का भजन भी मानता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही परमेश्वर की उन भेद की बातों को सुना है, सीखा है, समझा है और उससे ग्रहण किया है। प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, कुछ नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।